नमस्कार। प्रारंभिक कथन। प्रारंभिक कथन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। वो सवाल है, क्या होता अगर?
हाँ, ये सवाल तो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा ही है।
बिल्कुल। क्या होता अगर मैंने वो रास्ता चुना होता या उस रिश्ते को एक और मौका दिया होता? आज हम मैट हेग के बेहद चर्चित उपन्यास द मिडनाइट लाइब्रेरी की दुनिया में इसी सवाल का पीछा करेंगे।
और ये सवाल सिर्फ किताब की शुरुआत नहीं है, मतलब ये इसकी रूह है। मैट हेग एक ऐसे लेखक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य, उम्मीद, इन सब पे बहुत ईमानदारी से लिखते हैं।
शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद डिप्रेशन से एक लंबी लड़ाई लड़ी है।
जी, और वो अनुभव उनके लेखन में झलकता है। उनके शब्द सिर्फ लिखे हुए नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपके साथ बैठकर बात कर रहा हो।
मुझे लगता है इसी वजह से ये किताब इतनी खास बन गई। ये 2020 में आई जब पूरी दुनिया एक अजीब सी अनिश्चितता में थी।
हाँ, महामारी का दौर था।
और उस अकेलेपन के माहौल में एक ऐसी कहानी आई जो कहती है कि आपकी जिंदगी में अभी भी अनंत संभावनाएं हैं। ये लोगों के लिए एक मरहम की तरह थी।
तो चलिए आज ऐसी लाइब्रेरी के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें अफसोस, चुनाव और जिंदगी के सही मायनों के बारे में क्या सिखाती है।
कहानी शुरू होती है 35 साल की नोरा सीड से।
नोरा सीड, एक ऐसा किरदार जिससे कोई भी आसानी से जुड़ सकता है। वो इंग्लैंड के बेडफोर्ड शहर में रहती है।
और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। वो एक अच्छी तैराक रह चुकी है, एक बैंड में थी, दर्शन शास्त्र पढ़ा है उसने।
पर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बस असफलताओं का एक लंबा सिलसिला है।
हाँ, और कहानी का फोकस एक ऐसे दिन पर है जब सब कुछ, मतलब सब कुछ बिखर जाता है।
बिल्कुल, एक ही दिन में उसकी प्यारी बिल्ली वॉल्टेयर मर जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है और भाई से भी एक तनाव भरी मुलाकात होती है।
उससे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे उसकी जरूरत हो। और उस रात वो एक बहुत ही निराशा भरा फैसला लेती है।
वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन मौत की जगह वो एक बहुत ही अजीब जगह पहुंच जाती है।
आधी रात का वक्त है और वो एक विशाल लाइब्रेरी में है। चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें और सब की सब हरे रंग की जिल्द में।
यही है द मिडनाइट लाइब्रेरी, और यहां उसकी मुलाकात होती है मिसेज एल्म्स से,
उसकी पुरानी स्कूल लाइब्रेरियन।
हाँ, जो अब इस जादुई लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन है। वो नोरा को समझाती हैं कि ये जगह जीवन और मृत्यु के बीच में है और यहाँ की हर किताब
उसकी जिंदगी का एक अलग संस्करण है।
बिल्कुल, एक ऐसी जिंदगी जो वो जी सकती थी अगर उसने कोई एक फैसला अलग लिया होता।
और यहीं पर लेखक एक कमाल का कॉन्सेप्ट लाते हैं, अफसोस की किताब। एक मोटी भारी भरकम किताब जिसमें नोरा के सारे अफसोस लिखे हैं।
मुझे लगता है हम सबके पास एक ऐसी अदृश्य किताब होती है ना?
हाँ, जिसमें हम हर रोज नए पन्ने जोड़ते रहते हैं। और मिसेज एल्म नोरा को एक मौका देती हैं। वो कोई भी किताब उठाकर उस जिंदगी को आजमा सकती है।
और नियम भी बड़े सीधे हैं।
जी, अगर उसे कोई जिंदगी पसंद आ गई तो वो हमेशा के लिए वहीं रह सकती है, लेकिन अगर वो निराश हुई तो वापस लाइब्रेरी में आ जाएगी।
और यहीं से नोरा का सफर शुरू होता है।
उसका पहला चुनाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम में से कोई भी करता। वो अपने सबसे बड़े अफसोस को ठीक करने की कोशिश करती है।
वो उस जिंदगी में जाती है जहां उसने अपने मंगेतर डैन से शादी नहीं तोड़ी थी।
उनका सपना था कि वो शहर से दूर एक पब चलाएंगे।
और वो पहुंचती भी ठीक वैसी जिंदगी में है। वो और डैन एक पब के मालिक हैं, बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट, बिल्कुल जैसा उसने कल्पना की थी। लेकिन ये सपना बहुत जल्दी टूटने लगता है। उसे पता चलता है कि डैन उसे धोखा दे रहा है, शराबी बन चुका है और उनका रिश्ता वो बिल्कुल खोखला है।
ये इस किताब का पहला बड़ा सबक है ना, कि हम अपने दिमाग में जो क्या होता अगर वाली कहानियां बनाते हैं।
उन्हें हमेशा बेहतर मान लेते हैं।
हाँ, नोरा को पहली बार एहसास होता है कि उसकी कल्पना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था।
उस जिंदगी से निराश होकर वो वापस लाइब्रेरी लौटती है और अब वो एक और बड़ा अफसोस चुनती है। वो जिंदगी जहां उसने अपने भाई जो के साथ अपना बैंड द लैबिरिंथ्स नहीं छोड़ा था।
और इस बार तो सपना और भी बड़ा है।
हाँ, इस जिंदगी में वो एक ग्लोबल रॉक स्टार है। पैसा, शोहरत, दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स, वो सब कुछ जो कोई संगीतकार जाता है।
लेकिन यहां भी उस चमक के पीछे घना अंधेरा है।
बिल्कुल, वो नशे की आदी है, बहुत अकेली है और फिर उसे सबसे भयानक सच पता चलता है
क्या?
कि इस जिंदगी में उसकी सफलता की वजह से ही उसका भाई जो ड्रग्स में और गहरा धंसता चला गया और ओवरडोज से उसकी मौत हो गई।
मतलब जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकती थी वो असल में उसके सबसे प्यारे इंसान की मौत की वजह बन गई। ये तो बहुत ही भयानक है।
और यहीं पर लेखक सफलता के हमारे आइडिया पर सवाल उठाते हैं। नोरा को वो सब मिला जिसके लोग सपने देखते हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी भयानक थी।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सफलता की परिभाषा ही गलत है।
इस अनुभव के बाद नोरा कुछ और जिंदगियां आजमाती है। एक में वो ओलंपिक तैराक बनती है अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए।
वहां भी मेडल तो है, प्रसिद्धि है, पर आजादी नहीं है। उसकी जिंदगी एक जेल जैसी है।
सही कहा। और यहाँ एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। जिन जिंदगियों को नोरा ने अपनी मूल जिंदगी से बेहतर माना था वो सब अपने दुखों से भरी थी।
इसके बाद उसके चुनाव बदलने लगते हैं, है ना? अब वो बड़े अफसोस ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही।
हाँ, अब वो बस जिज्ञासा से अलग अलग रास्ते तलाश रही है, और ये रास्ते ज्यादा शांत और सरल हैं। जैसे वो एक ग्लेशियोलॉजिस्ट बनती है,
हिमनद विज्ञानी
जी, वो आर्कटिक में अकेली काम कर रही है। ये जीवन अकेला है, लेकिन शायद पहली बार उसे अपने काम में एक मकसद महसूस होता है।
और वहां एक पोला बेर से उसका सामना होता है। मौत के इतने करीब आकर उसे अजीब तरह से जिंदा होने का एहसास होता है। ये कमाल का विरोधाभास है।
बिल्कुल। एक और जिंदगी में वो एक पशु आश्रय में काम करती है। जानवरों की देखभाल करने में उसे खामोश सी संतुष्टि मिलती है। वो सीखती है कि मकसद हमेशा बड़े कारनामों में नहीं होता,
वो दयालुता के छोटे छोटे कामों में भी मिल सकता है।
हाँ। इन अनुभवों से नोरा पूरी तरह बदल जाती है। अब वो दर्द से भाग नहीं रही, बल्कि एक सच्चे जुड़ाव की तलाश कर रही है।
और इसी तलाश में उसे एक भूली बिसरी याद आती है। अपनी पुरानी नौकरी पर एक शख्स था ऐश, जिसने उसे कॉफी के लिए पूछा था और नोरा ने मना कर दिया था।
एक बहुत छोटा सा पल। अब वो उस जिंदगी को चुनती है जहां उसने हाँ कहा था।
और इस बार जब वो आंखें खोलती है
तो वो एक प्यार भरे घर में होती है। उसकी शादी ऐश से हुई है और उनकी एक छोटी बेटी है मौली।
पहली बार नोरा को बिना शर्त प्यार और अपनेपन का एहसास होता है।
वो अपनी बेटी को देखकर जो खुशी महसूस करती है वो उसे किसी भी रॉक कॉन्सर्ट या ओलंपिक मेडल में नहीं मिली थी। उसे लगता है बस यही है वो जिंदगी, वो यहीं रहना चाहती है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक प्यार करने वाले पति और एक बेटी वाली जिंदगी को परफेक्ट दिखाना थोड़ा आसान रास्ता नहीं है? असल जिंदगी में तो उस रिश्ते में भी अपनी मुश्किलें होती।
ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है लेखक का मकसद एक परफेक्ट जिंदगी दिखाना नहीं था, बल्कि ये एहसास दिलाना था कि खुशी जुड़ाव में है, बाहरी उपलब्धियों में नहीं। बेशक उस जिंदगी में भी मुश्किलें आती, पर शायद पहली बार नोरा को लगा कि वो उन मुश्किलों का सामना करने के लिए अकेली नहीं है।
सही बात है। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है, जैसे ही नोरा को सच्ची खुशी मिलती है और वो फैसला करती है कि उसे हमेशा के लिए यहीं रहना है।
मिडनाइट लाइब्रेरी ढहने लगती है, किताबें गिरने लगती हैं, सब कुछ कांप रहा है।
और मिसेज एल्म उसे बताती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
हाँ, वो बताती हैं कि ये लाइब्रेरी नोरा के अपनी मूल जिंदगी को चुनने की संभावना पर टिकी है। जिस पल उसने उस संभावना को पूरी तरह छोड़ दिया, जीवन और मृत्यु के बीच की यह जगह उसके लिए खत्म होने लगी।
और उसका असली शरीर, जो असल दुनिया में मौत के कगार पर था, अब हार मान रहा है।
और उस पल सब कुछ खो देने के डर से नोरा के अंदर से एक जबरदस्त आवाज उठती है,
मैं जीना चाहती हूँ।
हाँ, सिर्फ ऐश वाली जिंदगी नहीं या कोई और बेहतर जिंदगी नहीं, बल्कि बस जीना, अपनी अधूरी मुश्किलों भरी लेकिन अपनी जिंदगी।
और यही इच्छा, यही जीने की चाहत उसकी चाबी बन जाती है।
वो अपनी पूरी ताकत से अपनी मूल जिंदगी में लौटने की कोशिश करती है और उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने अपार्टमेंट में है और वो समय रहते मदद के लिए फोन कर लेती है, वो बच जाती है।
उपन्यास का अंत बहुत ही शांत और सुंदर है। नोरा अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रही है।
वो अपनी असली बूढ़ी हो चुकी मिसेज एल्म से मिलने जाती है, अपने भाई के साथ रिश्ते सुधारती है। वो अपने अतीत के साथ शांति में है और भविष्य को अपनाने के लिए तैयार है।
लेकिन इस बार अपनी इसी एक जिंदगी में
अंत में ये पूरी कहानी बस नजरिए को बदलने की है। जैसा कि नोरा को समझ आता है, जेल जगह नहीं थी बल्कि नजरिया था।
बिल्कुल, उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब उन मुश्किलों को देखने का उसका तरीका बदल गया है।
वो अब अपनी अफसोस की किताब का बोझ लेकर नहीं घूम रही।
तो मुझे लगता है इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि हम हमेशा एक आदर्श जीवन की तलाश में रहते हैं, ये सोचे बिना कि शायद खुशी उस जिंदगी में नहीं है जो हम जी सकते थे,
बल्कि उस जिंदगी को पूरी तरह से जीने में है जो हमारे पास अभी है। सच्ची खुशी प्रसिद्धि या सफलता में नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट में है, दयालुता के छोटे छोटे पलों में है।
जैसा कि उपन्यास में एक जगह कहा गया है, छोटी चीजों के बड़े महत्व को कभी कम मत समझो।
बिल्कुल, नोरा की कहानी हमें यही याद दिलाती है।
तो द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें ये नहीं सिखाती कि अपनी गलतियों को कैसे मिटाया जाए,
बल्कि ये सिखाती है कि उन गलतियों के साथ कैसे जिया जाए, उनसे कैसे सीखा जाए और अपनी एक अपूर्ण जिंदगी में ही अनंत संभावनाओं को कैसे खोजा जाए।
ये एक सुंदर याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे क्षण अक्सर सुबह से ठीक पहले आते हैं।
अंतिम कथन
नैरेटर।
अंतिम कथन नैरेटर। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है। अंतिम कथन नैरेटर। ऑडियो समाप्त।